सोशल मीडिया के युग में जहां बहुत सी चीजें आसान हुई हैं, वहीं एक और बहुत से अपराध भी होने शुरू हो गए हैं। अक्सर देखने को आता है कि लोग डिप्रेशन में या फिर अन्य कारणों से आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं। ये भी होने लगा है कि लोग लाइव आकर आत्महत्या या फिर अन्य कदम उठा लेते हैं। उस वक्त उनसे अगर कोई बात कर ले या फिर समझा ले, उनकी ठीक से काउंसलिंग कर दे, तो शायद वो उस सदमे से उभर जाए। कुछ सालों पहले ऐसी ही एक घटना हुई थी जब अमेरिका में एक व्यक्ति ने आत्महत्या से संबंधित पोस्ट की। लोगों ने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बेंगलुरु के रहने वाले दुष्यंत दुबे को वो वीडियो चुभ गया। उन्होंने तत्काल अमेरिका में बात की, संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कुछ समय का फेर और दूरी के कारण उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। अगर उस समय अमेरिका या फिर उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता, तो शायद एक जान बच जाती। दुष्यंत दुबे उसके बाद से इसी ओर काम करने लगे। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है, ये जीवन का एक अंग बन चुका है। लोग सोशल मीडिया पर सब कुछ अभिव्यक्त करते हैं। दुष्यंत सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। दुष्यंत इसी प्रकार के लोग जो अपनी परेशानियां सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, उनसे संपर्क करते हैं और मदद करते हैं। परेशानियां छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की होती हैं, जैसे मकान मालिक से झगड़ा, किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा है, या फिर किसी प्रकार से धमकाकर पैसे मांग रहा है। दुष्यंत इस तरह के केसेस में तुरंत मदद करते हैं। शायद इस ओर किसी ने सोचा नहीं, लेकिन अब तक दुष्यंत के पास हर दिन 200 से 300 मामले ऐसे आते हैं जिसे वो और उनकी टीम निपटाती है। कैसे इस सब की शुरुआत हुई, दुष्यंत बताते हैं।
जी, मैं मूलतः जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ और मेरा परिवार अहमदाबाद गुजरात में है, तो अहमदाबाद में काफी समय से मेरा परिवार बस चुका है। और जब मैं अहमदाबाद में था, तब वहाँ पर ही कुछ समाजसेवी संस्थाओं के साथ में वॉलंटियर करते हुए मुझे काफी अनुभव हुआ सोशल वर्क का। पर अगर वास्तविकता से हम देखें कि कहाँ से ये विचार मेरे दिमाग में आया, कहाँ से इस चीज की प्रेरणा मिली, तो एक बार ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। वैसे तो इंटरनेट पर इसकी जानकारी और भी उपलब्ध है, बट संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो ये हुआ था कि इंटरनेट पर 2008 में एक व्यक्ति था, 19 साल का लड़का था, उनका नाम था एम बिक्स। उन्होंने ऑनलाइन अपना सुसाइड नोट पोस्ट किया था और ये लिखा था कि वो अपने वेबकैम ऑन करके वो सुसाइड करने वाले। तो जितने भी लोग उसको देख रहे थे, उन सब ने उनको सीरियसली नहीं लिया, और जिन्होंने सीरियसली लिया उन्होंने उनको और ज्यादा फोर्स किया कि हाँ करो, ठीक है। किसी ने उनकी मदद नहीं की, किसी ने उनको समझाने की का प्रयास नहीं किया कि आप ऐसा मत कीजिए। और जब उन्होंने वेबकैम पर वो अपना ओवरडोज कर लिया, उसके बाद भी किसी ने उनकी मदद करने का प्रयास नहीं किया, पुलिस को बुलाने का प्रयास नहीं किया। तो मेरी उम्र उस वक्त 17 वर्ष की थी। तो उस टाइम पर मैंने जब अपने घर पर मैं आया, मैंने इस चीज़ को खोलकर देखा, तो मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा उनको बोला कि आप प्लीज़ पुलिस को फ़ोन कीजिए, क्योंकि मैं दूसरे देश में, मैं भारत में रहता हूँ, आप लोग अमेरिका में रहते हैं, ये भी अमेरिका में, आप कृपया करके अपनी पुलिस से संपर्क कीजिए। पर उन्होंने नहीं किया। तो फिर मैंने यहाँ से अपने पिताजी का फ़ोन लेकर उनको फ़ोन किया, रात आधी रात को वहाँ के पुलिस वालों को फ़ोन किया, उनसे बातें की, उनको सब समझाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने मेरे को उसके एरिया के पुलिस वालों का नंबर दिया, उनके जो ब्रावर्ड काउंटी के शेरिफ का नंबर दिया, वो नंबर भी मैंने वहाँ पोस्ट किया। मैंने कहा मैंने बात कर ली है पुलिस से, आप लोग फ़ोन करके फिर बता दीजिए तो पुलिस आ जाएगी। उसके बाद फिर मैंने खुद से उनसे फिर वापस बात की, ब्रावर्ड काउंटी के शेरिफ से। उन्होंने कहा कि अभी अभी किसी ने फ़ोन किया था, मतलब मेरा पोस्ट देखने के बाद, और हम लोग वहाँ जा रहे हैं। फिर 15 मिनट के बाद पुलिस आई, और बट अनफॉर्चुनेटली हमें फिर यह पता चला कि 6-7 घंटे के बाद उनकी सिस्टर ने पोस्ट किया कि वो जा चुके थे, उनको बहुत टाइम हो गया था ओवर डोज किए हुए, तो उनको बचाया नहीं जा सका। पर फिर ये हुआ कि एक इंसिडेंट के बाद मुझे, जब मैंने देखा कि क्या हो रहा है इंटरनेट, मतलब वापस जब मैंने वो फोरम खोल के देखा, तो वहाँ पर मुझे हजारों की संख्या में मैसेजेस आए हुए थे लोगों के दुनिया भर से, क्योंकि ये पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी थी उस समय तक। और उसके बाद हम लोगों ने, मतलब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि मैंने ऐसा क्या खास काम किया कि लोग मेरी इतनी सराहना कर रहे हैं, ये तो ऐसा काम है जो किसी को भी कर लेना चाहिए था। तो क्योंकि तब मेरा बचपन ही चल रहा था, और बचपन में बच्चों का दिमागी विकास भी एक अलग तरीके से होता है, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी में भी बदलाव आते हैं। तो जब ये मेरे साथ इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ, तो फिर उसके बाद मेरा जो नेचुरल टेंडेंसी थी टुवर्ड्स हेल्पिंग अदर पीपल या लोगों के लिए कुछ करूँ, उनके लिए थोड़ा सोशल वर्क करूँ, वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ धर कर गई और फिर उसके बाद से मैंने कहीं कहीं वॉलंटियर करना शुरू कर दिया। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई।
आखिर इन सब मामलों में कैसे दुष्यंत मदद करते हैं? यकीन जानिए, आज भी बहुत से लोग मामले को नज़रअंदाज करते हैं, पुलिस के पास नहीं जाना चाहते। दुष्यंत इस प्रकार के लोगों से संपर्क करके उनके पूरे मामले को हल करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस और संबंधित अधिकारियों से भी बात करते हैं। मामले बहुत छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए तो भविष्य में गंभीर हो जाते हैं।
जी, तो अभी मैं 8 साल से बैंगलोर में निवास कर रहा हूँ और मैं हमेशा यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए वॉलंटियर करता था। पर 3 साल पहले, 3 साढ़े 3 साल पहले जब कोविड की सेकेंड वेव खत्म हुई और लोग यहाँ बैंगलोर आना वापस शुरू हुए कामों के लिए, तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं ऑनलाइन शेयर करने लगे क्योंकि वो काफ़ी असहाय महसूस करते थे। और मैंने वहाँ जाकर रेडिट प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे उन लोगों को मदद करने की पेशकश की कि आपकी जो भी समस्या आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मुझे काफ़ी अनुभव है सरकारी ऑफिसर्स का, पुलिस का, इन सब चीज़ों का, मेरे एनजीओ के एक्सपीरियंस के थ्रू। तो फिर उसके बाद लोग मेरे पास लैंडलॉर्ड के इश्यूज लेके आते हैं, जब उनके मकान मालिक उनका डिपॉजिट नहीं दे रहे हैं या कोई अन्य समस्या हो रही है। कभी कभी लैंडलॉर्ड आते हैं कि टेनेंट जो है वो थोड़े वहाँ पर बिना किराए दिए रह रहे हैं। फिर उसके अलावा जो मेजर, मैं आपको बताता हूँ, जो विमेन्स से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, मतलब किसी महिला को कोई आदमी परेशान कर रहा है, उनको कुछ ब्लैकमेल कर रहा है या उनको ना चाहते हो, उनके ना चाहते भी उनको संपर्क करने का प्रयास कर रहा है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कभी कभी महिलाओं के साथ कुछ दुर्व्यवहार, अत्याचार, ठीक है, अलग अलग तरह के, ऑल द वे अप टिल द मोस्ट सीरियस, जितने सीरियस क्राइम्स होते हैं, हर एक चीज़ के लिए लोग हमारे पास आते हैं मदद मांगने के लिए। और हम जो उनकी मदद करते हैं वो ये करते हैं कि हम उनको सही तरह से कानून समझाते हैं कि कानून के अंतर्गत क्या प्रक्रिया होगी, उनके साथ बैठते हैं, आत्मीयता से बात करते हैं, उनकी समस्या को अपनी समस्या बना के उनको सही दिशा में हम उनको लेकर जाते हैं। और साथ साथ में हम भी रहते हैं, मतलब जब ऐसा है कि किसी को पुलिस में FIR करवानी है तो आमतौर पर बैंगलोर के पुलिस स्टेशन में FIR बहुत आसानी से नहीं होती, और फिर हम लोग जब साथ में जाते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि हम उनका उनके साथ में है तो उन्हें भी काफ़ी बल मिलता है, उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकें। और फिर इस तरह से हम हर चीज़ों में उनका उनकी मदद करते हैं। और साइबर क्राइम्स भी बैंगलोर में, क्योंकि IT सिटी है, सिलिकॉन वैली है, तो साइबर क्राइम्स भी नेचुरली ज़्यादा ही होंगे, तो उन सब के लिए भी लोग आते हैं। और अपने देश में जो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है 1930, वो बहुत अच्छा काम करती है, बट उनको भी सही जानकारियों की, सही तरह से जानकारियों की आवश्यकता होती है। तो उसमें हम लोगों की मदद करते हैं टू मेक श्योर कि जानकारियां अच्छे से दी जाए पुलिस को, जिससे कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके।
विशेषकर लड़कियों या महिलाओं के संबंध में इस तरह के मामले बहुत गंभीर होते हैं, उनको ब्लैकमेलिंग करने के बहुत से केस आते हैं। आजकल साइबर स्टॉकिंग भी बहुत आम हो चुकी है, या फिर कुछ उल्टे सीधे फोटो बनाकर धमकाना और फिर पैसे ऐंठना, ये भी चल गया है। लड़कियां इन मामले में बहुत डर जाती हैं, अक्सर इस तरह के मामले में वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। इन सब के अलावा घरेलू हिंसा और यौन शोषण के मामले भी शामिल रहते हैं। ऐसे सब केसेस भी दुष्यंत अपनी टीम के साथ हल करते हैं।
जी, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है महिलाओं को ये सांत्वना देना कि आप अकेली नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है, और कोई भी समस्या होगी तो हम देख लेंगे। और आपके पेरेंट्स तक, उस बहुत सारी महिलाओं को ये होता है कि मेरे पेरेंट्स तक ही बात चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम वो सब उनको समझाते हैं, उनको काउंसलिंग देते हैं। किसी को अगर थोड़े बहुत मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित हो चुके हैं उस चीज़ से, तो वो भी हम करते हैं। बट देन प्रैक्टिकली हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं कि उसमें कहाँ से इस इंसान ने इनको कॉन्टैक्ट किया और क्या क्या क्राइम इनके खिलाफ हुए हैं। फिर पुलिस के पास इनको लेकर जाते हैं, इनकी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, FIR करवाते हैं। FIR करवाने के बाद पुलिस के साथ फॉलो अप करते हैं, और पुलिस को भी कुछ एविडेंसेस की ज़रूरत होती है अपनी तरफ से, तो जितना हो सके हम इनसे पूछते हैं। कभी कभी लोग खुद ही उनको समझ में नहीं आता कि कोई चीज़ एविडेंस हो सकती है, तो वो सब चीज़ें हम पॉइंट आउट करते हैं और हम सब सारे के सारे साक्ष्य और प्रमाण इकट्ठे करके पुलिस को देते हैं और इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मतलब पुलिस ने बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेट करके अपराधियों को पकड़ भी लिया। उसके अलावा हम लोग एक और चीज़ ये भी करते हैं कि हम उनको काउंसिल करके ये समझाते हैं कि बहुत बार जो अपराधी होते हैं वो सिर्फ इनके डर का फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो इनको डरा सकते हैं, इनको बुली कर सकते हैं, तो इसलिए वो इनके डर का फायदा उठा के इनसे पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं। हम उनको क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी भी समझाते हैं कि अगर आप उनको रिप्लाई करती रहेंगी तो आपको और ज्यादा डराने का प्रयास करेंगे और दबाने का प्रयास करेंगे। जितना आप उनको इग्नोर करेंगे उतना ही वो आपको इन आपसे मतलब वो लोग आपको परेशान करना बंद कर देंगे।
काफी साल हो गए हैं दुष्यंत को लोगों की मदद करते हुए। अब तक 25,000 से अधिक लोगों की इन्होंने मदद की है। अब इनके साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं जो इनकी सहायता करते हैं। सही बात है, सोशल मीडिया पर अगर सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि लोगों की मदद भी की जाए तो एक नई उम्मीद जुड़ सकती है।
जी, मैं ऐसी गिनती तो नहीं रखता, बट निश्चित रूप से बिकॉज मैं 3 साल से कंसिस्टेंटली इस चीज को कर रहा हूँ तो मेरे अनुमानता कम से कम 25-30 हज़ार लोगों की तो मैंने मदद की है डायरेक्टली 1-on-1। और फिर हमारे जो सोशल इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि छोटे बच्चों को नोटबुक्स बांटना, उस तरह के काम करना, वो उसकी तो अलग गिनती है, बट एटलीस्ट 25-30,000 केसेस तो मैंने खुद पर्सनली हैंडल।
इस कार्य में भले दुष्यंत को बहुत आर्थिक लाभ ना हो लेकिन उनकी पहल से एक जिंदगी बच जाती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई पोस्ट आपको डिप्रेसिंग लगे तो उस व्यक्ति तक एक बार पहुंचने की जरूर कोशिश करिए, शायद आपकी पहल से एक जिंदगी फिर से रोशन हो जाए। लखनऊ से फैसल फरीद।